الحمد لله، جی امید ہے آپ لوگوں نے سجدہ کر لیا ہوگا. امپورٹنٹ اناؤنسمنٹس آپ لوگوں کے لیے، اسپیشلی ریگارڈنگ گریجویشن. ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری تعلیم القرآن، فہم القرآن، ایڈوانس تعلیم القرآن اور پشتو کورس، اسی طرح سارے کورسز کی گریجویشن ان شاء اللہ تعالیٰ 2025 اکتوبر میں ہوگی. اس کی ٹکٹس آپ کے لیے اویلیبل تھے، اب ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے پاس اسٹل بہت ساری ریکویسٹ آئی نہیں ہیں، تو لمیٹیڈ نمبر میں اب ہمارے پاس ہوں گے، جو انشاءاللہ ہم 1 فیبرری کو اوپن کریں گے صبح 9 بجے. تو آپ لوگ پھر اس وقت لے سکتے ہیں، لیکن صرف وہ لے سکتے ہیں جو گریجویٹ ہو رہے ہیں، اور دوسرے وہ جو کہ جیسے انڈیا، پاکستان، سعودی وغیرہ سے ویزا کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، اور اگر ان کا ویزا لگ جاتا ہے ان کو تب تک پتہ چل جائے گا، تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی لے سکیں گے. اس کے علاوہ ہم گیسٹ کے لیے اوپن نہیں کر سکتے، کیونکہ آلریڈی ہم ہمارا جو جتنے ہم نے لوگوں کو بلانا تھا وہ پورا ہو گیا ہمارا. دوسرے یہ کہ جن لوگوں نے ٹکٹ بائی کر لی ہیں تو ان سب کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنی ای میل ضرور چیک کریں کہ اس میں ٹکٹ آ گئی ہے، اور اس میں کیو آر کوڈ ہوگا، اس کو پرنٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیں. جن کے پاس یہ کیو آر کوڈ نہیں ہوگا وہ انٹر نہیں ہو سکیں گے ہال میں، کیونکہ اس کو سکین کرنا پڑے گا. تو یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس ابھی 1 سال تک کا تقریباً ٹائم ہے اور آپ اس کو لوز کر دیں اور پھر اس دن انٹر نہ ہو سکیں. تو ضروری ہے کہ آپ اس کو سنبھال کے رکھ لیں، یا اپنے فون میں سیو کر لیں، یا آپ اس کا پرنٹ آؤٹ لے لیں، لیکن اس کو بہت سنبھال کے رکھیے گا. اس کو لوز کرنے کی صورت میں آپ اپنی سیٹ لوز کر سکتے ہیں، کیونکہ ٹکٹ کے بغیر کوئی انٹر نہیں ہو سکے گا. اور جو لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ لینا تھا لیکن دیر ہو گئی، تو دیکھیں بہت دفعہ ہم آپ لوگوں کو کہتے رہتے ہیں نا، جب اناؤنسمنٹس آتی رہتی ہیں گروپس میں، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ نا سیریس لیتے نہیں ہیں بالکل. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، اور پتہ نہیں، جیسے عمرے کا ہمارے جانے کا تھا، تو میں کتنی ہی دفعہ کہتی رہی کہ جو ہے جس نے بھی اپنے لیے اسپاٹ لینا ہے تو وہ پہلے سے بتا دیں، لیکن لوگوں نے اس کی بالکل پرواہ نہیں کی. اور اس کے بعد جب جانے کے دن قریب آ گئے تو پھر وہ کہنے لگے کہ اب ہمیں جانا ہے. تو اس طرح سے ہمیشہ کا یہ ہمارا طریقہ ہو گیا، اور پھر ان کو نہیں ملی سیٹس، وجہ یہی ہوئی، یا کسی کو بہت مہنگی ملی. تو ہم اس چیز کو جو ڈیلے کرنے کی ہماری جو ایک عادت بن گئی ہے نا، کہ بس کل پہ ٹالتے جانا، کر لیں گے کر لیں گے، کچھ نہیں ہوتا، یہ اس کو ہمیں چھوڑنا چاہیے. کچھ چیزوں کو تو سیریس لیا کرے نا، ہر چیز کوئی بس ڈیلے پہ ڈالے رکھنا، آخری دن تک بس انتظار کرتے رہنا. حالانکہ میں نے بہت دفعہ کہا لیکن پھر بھی لوگوں نے نہیں اس کو سنا. اسی طرح یہ گریجویشن کی ٹکٹس کا بھی ہے، اتنی دفعہ کہا گیا، یہ بھی بتایا گیا کہ کوئی 4 دسمبر آخری ڈیٹ نہیں ہے، اگر ہماری سیٹس پہلے فل ہو گئیں تو پھر بند ہو جائے گا، اور وہی ہوا کہ سیٹس پہلے فل ہو گئی تھیں. انشاءاللہ تعالیٰ کافی لوگوں نے پوچھا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ عمرے پہ گروپ دوبارہ جائے گا انشاءاللہ رمضان میں. اس کے لیے بھی ابھی تو فلائر نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کا بھی ارادہ ہے تو وہ میں نمبر بتا دیتی ہوں، اس پہ کال کر کے وہ ضرور اپنی سیٹ بک کرا لے، ورنہ پھر بعد میں اینڈ میں پھر وہی کام اگر ہوئے تو پھر مجھ سے آپ لوگ کہتے ہیں تو پھر میں ہیلپ نہیں کر سکتی. تو یہ نمبر آپ لوگ نوٹ کر لیں، آپ میں سے یا آپ کی فیملیز میں سے کوئی جانا چاہے رمضان میں اسپرنگ بریک میں، 7th to 16th مارچ انشاءاللہ تعالی، تو آپ لوگ اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں، 212-725-2022 اور ایکسٹینشن 129. ٹھیک ہے، تو اس پہ آپ جب تک فلائر نہیں آتا، تو اگر جن لوگوں نے پہلے سے کرنا ہو تو پھر آپ کال کر کے اور وہاں پہ کم از کم اپنی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں. ہماری ایک ایڈمن کی طبیعت نہیں ٹھیک، ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرمائے، خاص طور پہ جنہوں نے بیماری میں دعا کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے گھروں میں بھی جو کوئی بیمار ہے اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. जी हाँ, अभी जून 19 को मैं रात में अपनी अम्मी से बात की और आफ्टर 5 आवर्स इन द मॉर्निंग मेरी अम्मी डाइड हो गई। अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतनी सी इंसान की ज़िंदगी होती है। और इसके दूसरे दिन 21 जून को मेरी बेटी की शादी थी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, वही हमने जो पढ़ा है कि अतहकून वला तबकून, या हुआ अदहक व अबका, वही हंसाता है और वही रुलाता है। तो वाकई इंसान के अपने बस में नहीं है ये कोई भी चीज़। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्ला। मेरी फूफो जान हॉस्पिटल में हैं, बहुत बीमार हैं, प्लीज़ उनकी शिफा और आसानी के लिए दुआ करने। अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला अजल अता फरमाए, उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर मे माई डियर उस्ताज़ एंड टीम, माशाल्लाह वेरी आई ओपनिंग लेक्चर। बिल्कुल, अगर इंसान को यकीन आ जाए तो एक आयत भी उसके लिए काफ़ी है आंखें खोल देने के लिए। डियर उस्ताज़ा, कैन वी प्रे नफल फॉर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे नफलों की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए उन्होंने जो बताया है कि ये मेरे लिए करो वो करें, ना कि नफल पढ़े। उन्होंने हमारे नफल क्या करने। अल्लाह पता नहीं हमारे नफल तो हमारे अपने भी किसी काबिल आए होंगे या नहीं। जैसे हमारे टूटे फूटे नफल होते हैं और जिसमें 100 ख्याल आ रहे होते हैं और पता नहीं कैसा वजू होता है और कैसे हम नफल पढ़ते हैं। उन्होंने जो अपने लिए फरमाया कि मेरे लिए दरूद भेजो मुझे, मेरे ऊपर, तो वो दरूद भेजते नहीं, तो नफल पढ़ने की ज़रूरत क्या है। खुद सोचे ना, अपने लिए नफल पढ़े हम, उनको नहीं ज़रूरत हमारे नफलों की। ज़्यादा करना है उनके लिए कुछ तो दरूद पढ़े और उनके तरीका ज़िंदगी, उनकी सुन्नतों को अपनाएं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्ला। प्यारी उस्ताज़ा कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको उम्रा बहुत मुबारक हो। जज़ाकल्लाहु खैरन, अल्लाह ताला कबूल करें। मेरा सवाल है कि जो गुनाह के असरात हम छोड़ चुके हैं उसे कैसे फिक्स करें। बहुत अच्छा इनका सवाल है, शाबाश। देखिए, अच्छा सवाल भी जो होता है ना, कहा जाता है आधा इल्म है। तो देखिए इनका कितना अच्छा सवाल है कि जो गुनाह के असरात हम छोड़ चुके हैं उनको अब कैसे फिक्स करें। कि जो है, अब इंसान वापस तो जा नहीं सकता, तो अब उनको मिटाने का तरीका ये है कि इन्नल हसनात युज़हिबुन सय्यिआत, जो नेकियां है ना वो गुनाहों को मिटाती। अब उनके ऊपर तौबा इस्तिगफार तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन नेकियां इतनी करें कि वो मिट जाएं। और आप देखेंगे सुबहान अल्लाह, हमारे पास ऐसी मिसालें हैं। आप देखें, एक मिसाल अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाया जुनेद जमशेद को। मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी याद होगा कि उस बंदे ने क्या गाने गाए थे, लेकिन लोगों को उसका जहन में आता है तो कुछ और तस्वीर आती है जहन में उसके खैर के कामों की, उसकी नेकियों की। तो इसी तरह आप जब नेकी के काम में उसी तरह दौड़ने लगते हैं जिस तरह आपने गुनाह में दौड़ लगाई थी, या जिस तरह आपने गुनाह किए थे उसी तरह आप नेकियां करना शुरू कर देते हैं, उतने ही जोश जज्बे और उससे भी ज्यादा उससे, तो अल्लाह ताला चाहे तो उन गुनाहों को भी अल्लाह ताला नेकियों में बदल देगा। और अगर किसी ने आपको कॉपी करके उस वक्त ऐसा किया था तो अल्लाह ताला उसके ऊपर चाहे तो आपको माफ कर दे। मैं अल्लाह से बहुत माफी मांगती हूँ, बट आज के लेक्चर ने मुझे फिर से उन गुनाहों को याद दिला दिया। जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह की पहचान और उसके कुरान से हमें जोड़ने के लिए अल्लाह ताला ही है जिसने जोड़ा। हम सभी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते कि उसने हमें अपने कलाम को सीखने का मौका हमें दिया। अब इसको हमारी जिंदगियों को बदलने का भी जरिया बना दें। वालेकुम अस्सलाम उस्ताद, आई रीड इन अ बुक दैट दिस इज ऑल्सो कबीरा सिन दैट वुमेन हेट्स हर हस्बैंड। देखिए, जो नाशुक्री है ना आदमी की, वो बुरी चीज़ है। हेट का तो ऐसा नहीं आया। अगर कोई औरत अपने हस्बैंड को हेट करती है ना, तो उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो उस रिश्ते में रहे, फिर उसको उससे खुला ले लेना चाहिए। ऐसी एक रिवायत हमें मिलती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में एक औरत थी, उसने कहा कि मैं अपने शौहर को नापसंद करती हूँ, मैं उसके साथ, यानी मेरे उसके कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो फिर मैं उससे अलग होना चाहती हूँ। तो ऐसी औरत को उससे अलग होना चाहिए क्योंकि वो उसका फिर कोई हक अदा नहीं कर पाएगी और फिर गुनाहगार होगी। तो बजाय इस तरह गुनाहगार होने के, फिर उसको उस शौहर के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। इवन दो हस्बैंड इज क्रूअल विद हर, तो हस्बैंड क्रूअल है जाहिर है, वो हेट ही करेगी, तो वो उसके साथ रह क्यों रही है? ऐसा थोड़ी कि हमारे दीन के अंदर तलाक नहीं है या खुला नहीं है तो बस इसके साथ ही मरना ही है हमने, नहीं, फिर वो अगर क्रूअल है तो फिर उसको छोड़ दे। वालेकुम असलाम उस्ताजा जी, मेरी आपा की सेहत के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला अजला अता फरमाए। वालेकुम अस्सलाम तो उस्ताजा, स्टॉक खरीदना हराम है जी? डिपेंड करता है कौन सा स्टॉक है ना। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्ला, प्यारी उस्ताजा जी, आई लव यू फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हान तआला। अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करे जिस रब की खातिर आप मुझसे मोहब्बत करती हैं। प्लीज से अगेन द नंबर, उम्रा इन रमदान। अच्छा जी, वो नंबर है 212, कोई लिख दे यहाँ पे 7252022, एक्सटेंशन है 129। कैन समवन, अच्छा ये आपने वही लिखा है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्ला उस्तासे जी, आपको उम्रा बहुत मुबारक हो, प्लीज़ दुआ फॉर आर हज जी, अल्लाह ताला आपको हज के लिए बुलाए और हज मबरूर की तौफीक अता फरमाए। दुआ मांगते वक्त ये कहने के जो बेहतर है अल्लाह वो कर दे, या हम जो चाहते हैं उस बात की दुआ की जाए। देखिए वैसे तो हम इस्तखारे की जब दुआ करते हैं तो हम उसके अंदर ये कहते हैं कि या अल्लाह ताला अगर ये काम मेरे लिए बेहतर है तो फिर इसको कर दे, इसमें आसानी बरकत और पैदा फरमा दे। लेकिन कई चीज़ें ऐसी खैर की हैं कि हम ये नहीं कहेंगे, मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा हज पे अल्लाह बुला ले, तो हम कहें अल्लाह अगर मेरे लिए हज करना बेहतर है तो फिर मेरे लिए कर दे, नहीं ऐसे नहीं। फिर या अल्लाह मेरे लिए सेहत अगर बेहतर है, नहीं फिर आप अल्लाह ताला से मांगेंगे या अल्लाह ताला उन चीज़ों की खैर, तो हमें पता है कि ये खैर की चीज़ें, या अल्लाह ताला मेरे लिए रिस्क के दरवाजे खोल दे, तो ये नहीं कि बस अगर बेहतर है तो फिर ये हो जाए, अगर बेहतर नहीं ये, सारी दुआएं ऐसे नहीं मांग सकते आप। कुछ दुआओं का तो है जिनके आपको नहीं पता कि भाई पता नहीं है ये चीज़ मेरे लिए बेहतर भी है या नहीं, लेकिन उसमें फिर इस्तखारे की दुआ है, उस तरह से आप दुआ मांगते। लेकिन जिनमें आपको पता है कि ये इसमें खैर ही खैर है, तो फिर उसको तो मांगना बेहतर है इस तरह से कि आप ये मांगे और इसरार के साथ मांगे, वो बेहतर होगा ही तो अल्लाह ताला आपको देगा। अलैकुम अस्सलाम सादा जी, कैन वी प्रे फर्स्ट फर्स्ट एंड सुन्ना लेटर? फर्स्ट फर्स्ट एंड सुन्ना लेटर मसलन कौन सी, उसमें कौन सी नमाज में? फजर में तो पहले सुन्नत पढ़ते हैं और उसके बाद जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी उसी तरह पढ़ेंगे ना। अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, डियर उस्तादा प्लीज एक्सप्लेन आया 48, बोथ अगना और अकना हैव सेम मीनिंग इन ऑपोजिट, लाइक अगना मीनिंग फकीर भी है और गनी भी? नहीं, अगना तो गनी ही है, अकना के फकीर भी हो सकता है और उसके जैसा माना भी हो सकता है, अगना जैसा भी, अकना का माना मालदार होना भी हो सकता है, ठीक है, और मैंने जो माने बताए होंगे। साजा की नेम्स के बारे में जो आपने बात बताई उससे बड़ी फिक्र हो गई है, हम तो ऐसा ही नाम रखते हैं जिनको मीनिंग कोई क्वालिटी हो, जिसमें नेकी जाहिर हो रही हो इंसान की, वैसे नहीं नाम रखने चाहिए, ठीक है, कि मैं बड़ी नेक हूँ। हाँ अगर आपका ये नियत है कि अल्लाह इसको ऐसा बना दे तो फिर तो अच्छी बात है, सहाबा कराम के नामों पे नाम रखे, अंबिया के नामों पे नाम रखे। अरे उस्तादा, पाँव के कुछ हिस्से पर बैंडेज बांधी हो तो क्या वुजू के वक्त मसा करना ठीक होगा? अगर तो वो बैंडेज उतारने से आपका जख्म ज्यादा बढ़ जाएगा, खराब हो सकता है, उस पर पानी नहीं लगना चाहिए, फिर तो जाहिर है आप नहीं उतारेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, वो छोटा मोटा कट लगा हुआ है, तो उतार लें आप उस पर वुजू करके, उसके बाद नई पहन लें, ठीक है, नई बैंडेज लगा लें, तो ये भी कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, डियर उस्तादा आपको उम्रा मुबारक हो, खैर मुबारक, अल्लाह ताला आपकी दीन की खिदमत को कबूल करे। मेरी प्यारी उस्तादा दुआ में याद रखें, मैं सबको दुआओं में याद रखा है अपने उम्रे पे, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, आप लोग सब मेरे दिल से करीब हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, ठीक है, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।